एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम अमेरिकी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा उपन्यास जिसने न सिर्फ अपनी भाषा से, अपने हीरो से पाठकों को चौंकाया, बल्कि अमेरिकी पहचान और नैतिकता की परतों को भी खोला। हम बात कर रहे हैं मार्क ट्वेन के एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन की।
हाँ बिल्कुल, और मार्क ट्वेन मतलब सैमुअल क्लेमेंस, जिन्हें अक्सर अमेरिकी साहित्य का पितामह भी कहते हैं। मिजूरी में उनका जन्म हुआ और मिसिसिपी नदी पर रिवर बोट पायलट का उनका जो अनुभव था वो उनके लेखन में साफ झलकता है ना?
हाँ बिल्कुल, उनकी शैली, उसमें हास्य है, तीखा व्यंग्य है और समाज की आलोचना भी, गजब का मिश्रण है।
एकदम, ऐसा लगता है जैसे एक आंख से वो समाज के पाखंड पर हंस रहे हों और दूसरी से इंसानी तकलीफों पर रो रहे हों। नदी की रवानी और गहराई दोनों थी उनकी कलम में।
सही कहा। और हकलबेरी फिन ये छपा 1885 में अमेरिका में। ये वो समय था जब देश गृह युद्ध यानी सिविल वॉर से गुजर चुका था।
हाँ, और पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन का दौर चल रहा था।
बिल्कुल,
मतलब दक्षिणी राज्यों को वापस जोड़ना, दास्ता से मुक्त हुए अफ्रीकी अमेरिकियों के अधिकार, बहुत जटिल समय था वो।
और नस्लीय अन्याय तो हद, वो समाज में बहुत गहराई तक था।
बिल्कुल, और पता है दिलचस्प बात क्या है, शुरू में जो विवाद हुआ वो उपन्यास के नस्लीय पहलू पर उतना नहीं था।
हाँ तो किस पर था?
वो था हक के व्यवहार और भाषा पर। उसे लोगों ने अशिष्ट, असभ्य माना। अरे, कॉनकॉर्ड पब्लिक लाइब्रेरी ने तो इसे कचरा कहकर बैन कर दिया था, कहा कि ये मलिन बस्तियों के लायक है।
अरे बाप रे, आज के हिसाब से तो ये बहुत अजीब लगता है। खैर, आज हम इस उपन्यास की कहानी, इसके पात्रों, खासकर हक और जिम की यात्रा,
हाँ, और स्वतंत्रता, नैतिकता, नस्लवाद जैसे जो मुख्य विषय हैं,
बिल्कुल उन पे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब इतनी जरूरी क्यों है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है?
कहानी हमें ले जाती है सेंट पीटर्सबर्ग, मिजूरी, मिसिसिपी नदी के किनारे, एक छोटा सा कस्बा। यहां हम मिलते हैं हकलबरी फिन से, 13 साल का लड़का।
हाँ
हाँ, हक वो विधवा डगलस और उसकी बहन मिस वॉटसन के साथ रह रहा है, और वो दोनों मतलब नेक इरादे से ही उसे सभ्य यानी सिविलाइज बनाने की कोशिश कर रही हैं।
सभ्य मतलब
साफ कपड़े पहनो, स्कूल जाओ, बाइबल पढ़ो, ये सब। लेकिन हक, उसे तो आजादी पसंद है, खुलापन। उसे ये सब बंधा बंधाया जीवन घुटन जैसा लगता है।
तो एक तरह से ये सभ्यता ही उसके लिए पहली कैद बन जाती है और फिर उसके जीवन में असली मुश्किल आती है ना?
हाँ बिल्कुल, उसके पिता की वापसी, पैप फिन, शराबी हिंसक।
ओह,
और पैप को हक का पढ़ना लिखना या उसके पास थोड़े पैसे होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वो हक को समाज से दूर रखना चाहता है, और वो हक को किडनैप कर लेता है, नदी किनारे एक सुनसान कैबिन में ले जाकर कैद कर देता है।
क्या, अपने ही बेटे को?
हाँ, और वहां हक को बहुत बुरा बर्ताव झेलना पड़ता है। अकेलापन, पिता की क्रूरता, बहुत भयानक अनुभव होता है ये उसके लिए।
जरा सोचिए, एक 13 साल के बच्चे पर क्या बीत रही होगी। तो वो इस कैद से निकलता कैसे है?
यही हक की होशियारी दिखती है, उसकी वो जिसे कहते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस। वो अपनी मौत का एक पूरा नाटक रचता है।
नाटक? कैसा नाटक?
अरे गजब का, कुल्हाड़ी से कैबिन का दरवाजा तोड़ता है, फिर एक जंगली सुअर को मारकर उसका खून फैला देता है, अपने बाल काटकर कुल्हाड़ी पर चिपका देता है
ताकि लगे कि लुटेरों ने उसे मारकर नदी में फेंक दिया।
बिल्कुल, इतनी सफाई से करता है कि किसी को शक न हो। और फिर रात के अंधेरे में एक छोटी नाव लेकर पास के जैक्सन आइलैंड की तरफ निकल जाता है।
कमाल है, एक बच्चे के लिए इतनी योजना बनाना और फिर जैक्सन आइलैंड पर। वहां वो अकेला होता है?
नहीं, वहां उसे एक साथी मिलता है, और वो है जिम, मिस वॉटसन का घरेलू गुलाम।
जिम? वो क्यों भागा है?
जिम ने सुन लिया था कि मिस वॉटसन उसे न्यू ऑर्लियंस बेचने की सोच रही हैं, $800 में।
न्यू ऑर्लियंस मतलब परिवार से हमेशा के लिए दूर?
हाँ, अपनी बीवी बच्चों से हमेशा के लिए बिछड़ जाना। तो अब उस द्वीप पर दो भगोड़े हैं, हक और जिम। दोनों की मंजिल एक ही है, आजादी।
एक सभ्यता और बाप के जुल्म से आजादी चाहता है, दूसरा गुलामी से। ये एक अजीब सा लेकिन शक्तिशाली गठबंधन है। पर क्या हक शुरू से ही जिम को बराबर समझता है?
नहीं, शुरुआत में तो उसके दिमाग में वही बातें हैं जो समाज ने सिखाई हैं। वो जिम के साथ एक बचकाना सा मजाक करता है।
मजाक?
हाँ, एक मरा हुआ रैटल स्नेक जिम के बिस्तर के पास रख देता है। लेकिन होता क्या है कि उस मरे सांप का साथी एक जिंदा सांप आकर जिम को डस लेता है।
ओह, ये तो बुरा हुआ।
हाँ, और जिम की तकलीफ देख के हक को बहुत पछतावा होता है। शायद पहली बार वो जिम के दर्द को महसूस करता है।
फिर उन्हें पता चलता है कि लोग जिम को ढूंढते हुए द्वीप पर आने वाले हैं,
तो उन्हें वहां से भी निकलना पड़ता है।
हाँ, वो जल्दी से एक बड़ा सा बेड़ा मतलब राफ्ट बनाते हैं और मिसिसिपी नदी पर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, एक अनिश्चित यात्रा।
और यहीं से उपन्यास का जो नैतिक केंद्र है वो उभरना शुरू होता है, हक के मन का संघर्ष।
हाँ, वो दुविधा। समाज कहता है भागे हुए गुलाम की मदद करना पाप है, चोरी है, लेकिन जिम, उसकी इंसानियत, उसकी आजादी की चाह, वो हक को सोचने पर मजबूर करती है।
और वो बेड़ा, वो उनके लिए क्या बन जाता है? महज लकड़ियों का ढांचा?
नहीं नहीं वो बेड़ा उनका अपना एक तैरता हुआ घर बन जाता है, एक सुरक्षित जगह नदी के बीचों बीच, समाज की नजरों से दूर।
हाँ, एक छोटा सा आजाद द्वीप है ना,
बिल्कुल,
जहां कोई मालिक गुलाम नहीं, बस दो इंसान। वो दिन में छुपते, रात में सफर करते, बातें करते घंटों।
क्या बातें?
राजाओं की, तारों की, भविष्य की। जिम अपने परिवार के बारे में बताता है, अपने बच्चों के लिए उसका प्यार, उनसे बिछड़ने का दर्द। ये सब सुनकर हक के मन में जिम के लिए सम्मान और अपनापन बढ़ता जाता है।
तो जिम का जो मानवीय पक्ष है वो हक के सामने खुलता जाता है। लेकिन यात्रा सीधी नहीं रहती, वो कोहरे वाली घटना, उसका क्या महत्व है?
वो बहुत अहम है। एक रात घने कोहरे में वो बिछड़ जाते हैं। जब वापस मिलते हैं तो हक फिर एक मजाक करता है।
कहता है कि जिम ने ये सब सपना देखा था।
फिर से मजाक?
हाँ,
लेकिन इस बार जिम गुस्सा नहीं होता, वो बहुत आहत होता है और बड़े सम्मान से, गरिमा से जवाब देता है। कहता है हक ने उसके जज्बातों का मजाक उड़ाया है, जबकि वो हक के लिए कितना परेशान था। वो एक लाइन कहता है जो बहुत चुभती है, कचरा वो लोग होते हैं जो अपने दोस्तों के सर पर गंदगी डालते हैं और उन्हें शर्मिंदा करते हैं।
ओहो,
हक को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो बाद में लिखता भी है कि किसी निगर के सामने खुद को झुकाने में 15 मिनट लगे, लेकिन मैंने ऐसा किया और मुझे इसका कभी पछतावा नहीं हुआ।
ये बहुत बड़ा क्षण है, ये सिर्फ माफी नहीं है, ये हक का जिम की इंसानियत को, उसकी भावनाओं को स्वीकार करना है। यहाँ उसका दिल उसकी सिखाई हुई नैतिकता पर जीत हासिल करता है।
हाँ, वो दोस्ती को, इंसानियत को समाज के बनाए नियमों से ऊपर रखता है। लेकिन उनकी मुश्किलें कहाँ खत्म होती हैं? उनका प्लान था कायरो पहुंचने का।
कायरो, जहाँ ओहायो नदी मिसिसिपी में मिलती है।
हाँ, ताकि वहां से स्टीम बोट पकड़कर आजाद राज्यों में जा सकें। लेकिन वो कायरो से आगे निकल जाते हैं, कोरे में पता ही नहीं चलता।
अरे, मतलब वो और गहरे दक्षिण में दास्ता वाले इलाके में जा रहे थे।
हाँ बिल्कुल। और तभी एक और हादसा होता है, एक स्टीम बोट उनके बेड़े से टकरा जाती है, बेड़ा टूट जाता है और हक और जिम फिर बिछड़ जाते हैं।
हे भगवान, हर बार कोई ना कोई मुसीबत। तो हक कहाँ पहुंचता है इस बार?
हक तैरकर किनारे लगता है और वहां उसे ग्रेंजर फोर्ड परिवार मिलता है जो उसे पनाह देता है।
ये परिवार अमीर है, संस्कारी दिखता है, दक्षिणी रईसों जैसा।
लेकिन वहां भी सब ठीक नहीं होता है ना?
बिल्कुल नहीं। इस शराफत के पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी है। ग्रेंजरफोर्ड परिवार की शेफर्डसन परिवार से पुरानी दुश्मनी है, दशकों पुरानी।
क्यों है दुश्मनी?
किसी को ठीक से पता भी नहीं, बस चली आ रही है। और ये लोग चर्च में भी बंदूकें लेकर जाते हैं।
चर्च में बंदूकें, ये तो पाखंड की हद है। ट्वेन यहाँ दक्षिणी सम्मान की संस्कृति पर कटाक्ष कर रहे हैं।
हाँ, और ये पाखंड तब और भयानक हो जाता है जब ग्रेंजरफोर्ड की बेटी सोफिया एक शेफर्डसन लड़के के साथ भाग जाती है। उसके बाद तो मारकाट मच जाती है।
ओह,
हक का हमउम्र दोस्त बक ग्रेंजरफोर्ड उसमें मारा जाता है। हक ये सब देखकर दहल जाता है और वहां से भाग निकलता है। ये अनुभव तो हक को समाज की क्रूरता और बेमतलब की हिंसा का असली चेहरा दिखा देता होगा, नदी की शांति के बिल्कुल उलट। फिर वो जिम से कैसे मिलता है?
वो भागकर वापस नदी किनारे पहुंचता है और देखता क्या है कि जिम वहां है। उसने टूटे हुए बेड़े की मुरम्मत कर ली है।
अरे वाह, जिम जिंदा है।
हाँ, हक उसे देखकर इतना खुश होता है, वो कहता है मैं जिम को देखकर बहुत खुश था, अब मैं अकेला नहीं था। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा हो चुका है।
लेकिन उनकी शांति मुझे लगता है ज्यादा देर नहीं टिकती होगी।
नहीं टिकती। उनके बेड़े पर दो अनचाहे मेहमान आधमकते हैं, दो ठग।
ठग कौन है ये?
कानून से भाग रहे होते हैं। एक खुद को कहता है ड्यूक ऑफ ब्रिजवाटर और दूसरा उससे भी बड़ा कलाकार कहता है मैं फ्रांस के खोए हुए राजा का बेटा हूं, डॉफिन यानी किंग।
हा हा, ड्यूक और किंग, हक क्या मान लेता है उनकी बातें?
नहीं, हक समझ जाता है कि ये दोनों पक्के धोखेबाज हैं, लेकिन झगड़ा ना हो इसलिए चुप रहता है।
ये ड्यूक और किंग, ये सिर्फ ठग हैं या कुछ और दिखाते हैं?
ये सिर्फ ठग नहीं है, ये समाज के पाखंड, लालच और भ्रष्टाचार के जीते जागते नमूने हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे किनारे की गंदगी उनके बेड़े तक भी पहुंच जाती है।
और ये करते क्या है?
अरे, नदी किनारे के कस्बों में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कभी धर्म के नाम पर चंदा ईंटते हैं, कभी शेक्सपियर का भद्दा नाटक करते हैं, और सबसे घटिया वो रॉयल नॉनसेंस नाम का एक अश्लील तमाशा दिखाकर पैसे लूटते हैं और भाग जाते हैं।
ट्वेन यहाँ लोगों की बेवकूफी पर भी निशाना साध रहे हैं कि कैसे वो आसानी से झांसे में आ जाते हैं, लेकिन इनका सबसे बुरा रूप शायद विल्क्स वाले मामले में सामने आता है।
हाँ, वो तो नीचता की हद है। उन्हें पता चलता है पीटर विल्क्स नाम के एक अमीर आदमी की मौत हुई है और उसके इंग्लैंड वाले भाइयों का इंतजार हो रहा है।
तो ये दोनों भाई बनकर पहुंच जाते होंगे?
बिल्कुल, भेज बदल के पहुंचते हैं और मृतक की तीन भोली भाली भतीजियों मैरी जेन, सुजैन और जोआना का भरोसा जीत लेते हैं। इरादा होता है पूरी जायदाद हड़पने का।
और हक, इस बार वो क्या करता है? क्या वो चुप रहता है?
नहीं, इस बार हक से रहा नहीं जाता। वो उन लड़कियों की शराफत और इन ठगों की मक्कारी देखकर बहुत परेशान हो जाता है। पहली बार वो इनके खिलाफ कुछ करता है।
क्या करता है वो?
वो सोने का थैला चुरा कर पीटर विक्स के ताबूत में छिपा देता है ताकि पैसा गलत हाथों में ना जाए।
वो बाद में मैरी जेन को सच बताने की कोशिश भी करता है।
फिर असली वारिस आ जाते हैं, हंगामा मच जाता है, हक भागकर बेड़े पे पहुंचता है।
लेकिन वो दोनों ठग भी बच निकलते हैं।
हाँ, दुर्भाग्य से वो दोनों भी किसी तरह बचकर वापस बेड़े पर आ जाते हैं।
लेकिन उनका सबसे घिनौना काम तो अभी बाकी था, है ना, जिम के साथ?
हाँ, पैसों की जरूरत पड़ती है तो किंग वो काम करता है जो हक सोच भी नहीं सकता था। वो जिम को पकड़वा देता है और सिलास फेल्प्स नाम के किसान को सिर्फ 40 गंदे डॉलर में बेच देता है।
ओ नहीं, ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात है। हक पर क्या असर होता है इसका? ये तो उसके लिए सबसे बड़ा नैतिक संकट होगा।
हाँ, वो पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है ये उसी के पापों का फल है, भगवान की सजा है एक भागे हुए गुलाम की मदद करने की। समाज की सिखाई बातें, नरक का डर, वो सब उस पर हावी हो जाता है।
तो वो क्या करता है? हार मान लेता है?
वो सोचता है अपनी आत्मा बचाने का एक ही तरीका है, मिस वॉटसन को खत लिखकर बता दे कि जिम कहाँ है। उसे लगता है यही सही काम है। वो खत लिखने बैठता भी है
लेकिन वो भेज नहीं पाता है ना?
बस उसे रोक लेता है।
हाँ,
खत लिखने के बाद वो रुक जाता है। उसके दिमाग में जिम के साथ बिताए पल घूमने लगते हैं, नदी पर उनकी बातें, जिम की अच्छाई, उसका प्यार, कैसे जिम ने उसे बचाया था, उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त कहा था।
वो सोचता है कि जिम, जिसे समाज कुछ नहीं समझता, उसने उसके साथ कितनी वफादारी निभाई है।
हाँ, उसका दिल, उसकी अंतरात्मा, वो समाज की सिखाई नैतिकता के खिलाफ गवाही देती है।
और फिर
वो क्षण आता है अमेरिकी साहित्य का शायद सबसे प्रसिद्ध क्षणों में से एक। हाँ, वो उस खत को फाड़ देता है और कहता है ठीक है तो मैं नरक जाऊंगा।
क्या बात है, ये उपन्यास का नैतिक शिखर है। हक यहां समाज की सारी नैतिकता, सारे डर, सारी नियम, सब कुछ ठुकरा देता है। वो चुनता है दोस्ती, इंसानियत, अपनी अंतरात्मा की आवाज को।
बिल्कुल, भले ही उसे लगे कि इसकी कीमत नरक जाकर चुकानी पड़ेगी। इसमें जो व्यंग है कि जिसे समाज पाप समझता है वही असल में सबसे बड़ा नैतिक काम है।
व्यक्तिगत विवेक की जीत। इसके बाद वो क्या करता है?
वो फौरन निकल पड़ता है जिम को छुड़ाने फेल्प्स के खेत पर। वहां पहुंचता है तो किस्मत देखिए, फेल्प्स परिवार उसे अपना भतीजा टॉम सॉयर समझ लेता है।
टॉम सॉयर, जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे?
हाँ, और थोड़ी देर में असली टॉम सॉयर भी वहां पहुंच जाता है।
अरे वाह, टॉम सॉयर, हक का पुराना दोस्त, वो जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता है, उसका क्या रवैया होता है ये सब जानकर?
हक उसे सब बताता है और टॉम, वो तो रोमांच के नाम पर कुछ भी करने को तैयार रहता है। वो जिम को छुड़ाने में मदद करने को राजी हो जाता है, लेकिन
लेकिन
उसका तरीका हक जैसा सीधा साधा नहीं होता। वो इसे असल जिंदगी की तरह नहीं बल्कि अपनी पड़ी हुई एडवेंचर कहानियों जैसा बनाना चाहता है। एक बहुत ही उलझी हुई, बेमतलब की और सच कहूं तो क्रूर चोरी इवेजन की योजना बनाता है।
हाँ, टॉम हमेशा से ऐसा ही था। यहाँ ट्वेन शायद किताबी रोमांच और असल जिंदगी की नैतिकता का फर्क दिखा रहे हैं। टॉम के लिए जिम की जान और आज़ादी एक खेल है।
बिल्कुल, उसकी योजना में पाए में रस्सी की सीढ़ी छिपाना, अजीब अजीब खत भेजना, जिम की झोपड़ी में सांप मकड़ियां छोड़ना, ये सब शामिल है। वो जिम की तकलीफ की परवाह ही नहीं करता। ये दिखाता है कि कैसे जो लोग असलियत से दूर रहते हैं वो दूसरों के दर्द को नहीं समझ पाते।
इस बचकानी योजना का अंत क्या होता है? कुछ गड़बड़ होती है?
हाँ, भागने की कोशिश में शोर मच जाता है, गांव वाले आ जाते हैं और भागते हुए टॉम के पैर में गोली लग जाती है।
गोली अब जाती है, फिर
जिम एक बार फिर अपनी इंसानियत दिखाता है। वो भाग सकता था लेकिन वो घायल टॉम की देखभाल के लिए रुक जाता है, डॉक्टर को बुलाने में मदद करता है और नतीजा वो फिर से पकड़ लिया जाता है।
जिम का निस्वार्थ भाव अपनी आजादी दांव पर लगा दी उसने, और अंत में क्या पता चलता है? कुछ रहस्य खुलते हैं।
हाँ, जब टॉम होश में आता है तो दो बड़े रहस्य खुलते हैं। पहला, मिस वॉटसन की मौत 2 महीने पहले ही हो चुकी थी।
क्या?
और मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत में जिम को आजाद कर दिया था।
मतलब जिम उस पूरी चोरी के दौरान पहले से ही आजाद था?
हाँ, और टॉम को ये बात पता थी, उसने सिर्फ अपने रोमांच के लिए ये बात सबसे छिपाई।
हे भगवान, ये तो टॉम के चरित्र पर बहुत बुरा असर डालता है। उसका सारा एडवेंचर न सिर्फ क्रूर था बल्कि एकदम बेमानी था। और दूसरा रहस्य?
दूसरा रहस्य जिम बताता है हक को। वो याद दिलाता है कि बहुत पहले नदी में बहते घर में जो लाश मिली थी वो हक के पिता पैप की थी।
पैप की?
हाँ, जिम ने तब हक को देखने नहीं दिया था, तो अब हक अपने पिता के डर से भी हमेशा के लिए आजाद हो गया।
तो अंत में जिम आजाद है, हक भी अपने पिता से आजाद है, लेकिन ये अंत थोड़ा अजीब सा लगता है। जिम की आजादी हक के प्रयासों से नहीं, एक वसीयत से मिलती है। टॉम की हरकतें परेशान करती हैं और हक का वो फैसला कि वो फिर से सभ्य बनने के बजाय प्रदेश की ओर निकल जाएगा, ये क्या है? समाज से भागना या नई उम्मीद?
हाँ, ये अंत थोड़ा अस्पष्ट है और शायद यही इसकी खूबी है। ये सवाल छोड़ जाता है, क्या समाज बदल सकता है या सच्ची आज़ादी सिर्फ उससे दूर जाकर ही मिलेगी।
बिल्कुल, तो चलिए संक्षेप में मुख्य विषयों और इसके साहित्यिक महत्व पर नजर डालते हैं। पहला तो साफ है, स्वतंत्रता बनाम सभ्यता।
हाँ, नदी और बेड़ा, एक तरफ प्रकृति, सच्चाई, समानता, और किनारा दूसरी तरफ पाखंड, हिंसा, बंधन। और सच्ची आजादी सिर्फ भागना नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की सुनना है।
दूसरा, नस्लवाद और मानवीय गरिमा, जिम का चरित्र। वो इस उपन्यास का दिल है। ट्वेन उसे एक पूर्ण इंसान के रूप में दिखाते हैं, एक पिता, दोस्त, एक नैतिक व्यक्ति।
हाँ, वो उस समय के नस्लीय पूर्वाग्रहों को सीधी चुनौती देता है और ये भी दिखाता है कि दास्ता कैसे गुलाम और मालिक दोनों को नैतिक रूप से गिराती है।
और वो जिम का कहना कि टॉम अंदर से गोरा है, ये उस समय की सोच की दुखद विडंबना है कि अच्छाई को भी रंग से जोड़ा जाता था। तीसरा विषय है व्यक्तिगत अंतरात्मा बनाम सामाजिक नैतिकता। हक का पूरा संघर्ष यही है।
बिल्कुल, सच्ची नैतिकता समाज के नियमों से नहीं बल्कि सहानुभूति और अनुभव से आती है। और चौथा, पाखंड, जो हर जगह है, धर्म में, समाज में, मिस वॉटसन से लेकर ड्यूक और किंग तक।
साहित्यिक नजर से देखें तो इसने अमेरिकी साहित्य को बदल दिया। सबसे बड़ी बात थी स्थानीय भाषा में कहानी कहना, हक की अपनी आवाज, अनपढ़, सीधी लेकिन सच्ची।
हाँ, वो वर्नैक्युलर नैरेटिव, इसने साहित्य को आम लोगों के करीब ला दिया। फिर नदी और बेड़े का प्रतीकात्मक, नदी जीवन की यात्रा, बेड़ा एक आदर्श समाज की तरह।
और ट्वेन का व्यंग और विडंबना का इस्तेमाल, वो किसी को नहीं छोड़ते। शायद इसीलिए हेमिंग्वे ने कहा था कि सारा आधुनिक अमेरिकी साहित्य हकलबेरी फिन से निकला है।
बिल्कुल,
तो अंत में ये कहानी हमें शायद यही सिखाती है कि सच्ची नैतिकता, वो कई बार समाज के नियमों के खिलाफ जाकर, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर और इंसानियत को चुनकर ही मिलती है।
हाँ, और ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे फैसले क्या वो बाहरी दबावों से आते हैं या हमारे अंदर की आवाज से, हमारे विवेक से।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।